हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इशिका की उठते ही तबीयत खराब हो गई थी। उसे अपने सिम्टम्स थोड़े बहुत प्रेगनेंसी जैसे लगे, तो इशिका बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल चली गई थी। इशिका की जाने की काफ़ी देर बाद राधिका उसके कमरे में आई थी। तब इशिका को वहाँ ना देखकर वो परेशान हो गई थी। राधिका ने कुछ ही देर में बाथरूम से लेकर घर का हर एक कोना तलाश कर लिया था, लेकिन इशिका उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। एक तो इशिका प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। ऐसे में उसका गायब होना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। केशव, इशिका कहीं भी नहीं मिल रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभिमन्यु ने उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी थी और मैं एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी, राधिका आंखों में आंसू लिए केशव के सामने बोल रही थी। केशव ने उसे दिलासा दिया और कहा, डोंट वरी, उसकी याददाश्त जरूर गई है, लेकिन हमारी बेटी बहुत स्मार्ट है, वो किसी काम के चलते ही यहीं कहीं गई होगी। फिर भी मैं पृथ्वी को कॉल कर देता हूँ, वो उसकी लोकेशन पता कर लेगा। इशिका के बारे में पता लगाने के लिए जब केशव ने पृथ्वी को कॉल किया तो अभिमन्यु और पृथ्वी तक भी इशिका के गायब होने की खबर पहुंच गई थी। अभिमन्यु ने आँ भरी और कहा, सब कुछ इतना खराब क्यों होता जा रहा है? नक्श जैसा इंसान जिसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है, वो हमारे नाक में दम कर रहा है, और ऊपर से इशिका ना जाने कहाँ चली गई। डोंट वरी सर, मैं पता लगा लूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, पृथ्वी बोला। टाइम ही तो नहीं है, कल रात नक्श की वजह से इशिका परेशान थी, ऊपर से वो अजीब आर्टिकल भी उसके सामने आ गया। मुझे डर है कि कहीं वो हम सबसे दूर तो नहीं चली गई होगी। हम जिस तरह से उससे बातें छुपा रहे हैं, उसे जरूर हम पर शक हो गया होगा पृथ्वी, वो बहुत स्मार्ट है, अभिमन्यु परेशान लहजे में बोला। उसका कहना भी सही था, पृथ्वी इशिका की लोकेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इशिका ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, इस वजह से पृथ्वी इशिका के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। पृथ्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और निराशा से नामे सिर हिला दिया था। ठीक है, तुम पुलिस को कॉन्टैक्ट करो, मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ, अभिमन्यु बोला। वहीं दूसरी तरफ इशिका ने हॉस्पिटल में अपने प्रॉपर टेस्ट करवाए और इशिका की प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई थी। जहाँ तक इशिका को याद था, उसके कभी किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रहे थे, ऐसे में अपनी प्रेगनेंसी का पता चलने पर वो शॉक हो गई थी। इन सबका शक इशिका को राधिका के ऊपर हो रहा था। आदर्श, मालविका और आयशा गायब थे और इशिका के पूछने पर अक्सर राधिका कोई ना कोई बहाना बना देती थी। उसे लगा कि अगर वो घर जाकर राधिका से सीधे सीधे कुछ पूछेगी तो वो फिर से कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देगी। बस यही सोचकर इशिका इस वक्त एक पार्क में बैठी हुई थी। वो परेशान नजर आ रही थी। इशिका सिर पकड़कर आंखें बंद करके अपनी जिंदगी के घटनाक्रम को याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने पास में एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसके लिए अनजान थी, लेकिन हाँ, उस शख्स की बातें जाहिर कर रही थीं कि वो उसे जानता है। इशिका ने एक झटके में आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। वो उस इंसान से पहली बार मिल रही थी। इशिका ने सिर हिलाकर पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? बहुत अच्छे से। आपको बता दूं कि आपको ऐसी हालत में यहाँ अकेले पार्क में नहीं रहना चाहिए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है, उसने जवाब दिया। ऐसी हालत से तुम्हारा मतलब? मैं ठीक हूँ, इशिका ने थोड़ा सक पका कर जवाब दिया। एक अनजान इंसान पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए इशिका ने अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को पीछे छुपाने की कोशिश की। ऐसी हालत से मेरा मतलब है प्रेगनेंसी में। समझ नहीं आता चाचू आपको अकेले छोड़ भी कैसे सकते हैं, उसने जवाब दिया। वो कोई और नहीं बल्कि अभिमान था। आशी से अपनी सगाई से दूर भागने के लिए अभिमान को अभिमन्यु से बेहतर रास्ता कोई और नहीं दिखा, इसलिए वो मुंबई आ गया था। इशिका की तरह वो भी परेशान था, इसलिए उसी पार्क में आ गया था और इत्तेफाक से दोनों मिल गए थे। चाचू, तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता है और तुम्हारे चाचू को भी, क्या ये बच्चा उनका है? तुम कौन हो और प्लीज मुझे बताओ कि इस बच्चे के डैड कौन है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, इशिका ने बेचैनी से जवाब दिया। अभिमान की बातें सुनकर वो काफी रेस्टलेस हो गई थी। अभिमान ने गहरी सांस ली और इशिका की तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी थी। वो बोला, सबसे पहले तो आपको रिलैक्स करने की जरूरत है, आपको पता चल गया है ना कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो इस कंडीशन में परेशान होना आपके और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा, हाँ जानता हूँ उसके बाद मुझे डांट भी सुनने को मिल सकती है, पर आपका सच जानना जरूरी है। अभियान की तसल्ली के लिए इशिका ने थोड़ा सा पानी पिया। उसने धीमी आवाज में कहा, चलो कोई तो मिला जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है, अब तक सब मुझसे झूठ बोले जा रहे थे, उम्मीद है कि तुम बिना किसी झूठ के मुझे सब सच बताओगे। तुम्हारे चाचू कौन है और मेरी प्रेगनेंसी का उनसे क्या लेना देना है? मेरे चाचू मिस्टर अभिमन्यु राजवंश हैं, अभिमान ने जवाब दिया, जिसे सुनकर ऋषिका को एक बार के लिए झटका सा लगा। अभिमन्यु राजवंश, जो राजवंश एम्पायर का सीईओ है और नक्श का चाचू है, पर जहाँ तक मुझे याद है नक्श का कोई भाई नहीं है, इशिका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि नक्श मेरा भाई नहीं कजिन है, अभिमान बोला। वो इशिका के हर एक सवाल का जवाब शांत लहजे में दे रहा था। इस तरह गोल गोल घुमाकर बातें मत करो, ठीक है, मान लिया कि तुम राजवंश फैमिली से बिलोंग करते हो और अभिमन्यु राजवंश तुम्हारे चाचा लगते हैं। अब बताओगे कि आखिर क्या बात है? अभिमन्यु ने भी मुझसे झूठ बोला। वो पहले से शादीशुदा है, ऊपर से अब तुम ये कहना चाहते हो कि ये बच्चा उससे जुड़ा हुआ है। कहीं ये तो नहीं कि वो उसका बच्चा हो? इशिका चिढ़ते हुए बोली। उसके सर में दर्द हो रहा था, ऊपर से अभिमान की बातें उसे कन्फ्यूज कर रही थी। अभिमान ने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, हाँ बिल्कुल, ये बच्चा अभिमन्यु राजवंश का है और आप ही उनकी वाइफ हैं। इससे पहले कि अभिमान आगे कुछ बात बताता, इशिका गुस्से में खड़ी हो गई थी। वो उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हें अगर अभिमन्यु राजवंश ने भेजा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसकी बातों में अब नहीं आने वाली हूँ। अभिमान ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकाला। हालांकि अभिमन्यु ने सभी आर्टिकल्स और सब कुछ हटवा दिए थे, लेकिन अभिमान के मोबाइल में कुछ फोटोज थी। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन इशिका की तरफ कर दी थी और एक एक करके फोटोज को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये फोटोज मुझे रियल नहीं लग रही हैं, मैंने कभी अभिमन्यु के साथ ऐसी तस्वीरें क्लिक नहीं करवाई हैं, इशिका उन फोटोज को देखते हुए बोली। आपने करवाई हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। याद है ना कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपके दिमाग से कुछ पुरानी बातें मिट चुकी हैं और बहुत सारी यादें जो चाचू से जुड़ी हुई थीं। आप दोनों की शादी को काफी टाइम हो चुका है इशिका, सब लोग आपसे ये सब इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके दिमाग पर किसी तरह का प्रेशर आए या फिर इसका असर बच्चे पर जरा सा भी पड़े, अभिमान ने जवाब दिया। इशिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उसके लिए अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि वो अभिमन्यु की पत्नी है और उनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है। हालांकि अभिमान ने जो सबूत दिखाए थे उन्हें भी झुठलाया नहीं जा सकता था। इशिका अपनी कश्मकश में खोई हुई उन तस्वीरों को देख रही थी। तभी अभिमान बोला, मैं जानता हूं मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो आपके लिए ज्यादा होगा और डॉक्टर ने मना भी किया है, पर मेरे हिसाब से आपको सच पता होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में सोचेंगी आपके दिमाग और बच्चे पर उतना ही बुरा असर पड़ेगा।
कुछ और भी है? इशिका ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। इतने दिनों में पहली बार कोई ऐसा था जो उसे सच बोल रहा था। मालविका आपकी रियल मॉम नहीं है, आपकी असली माँ राधिका सिंघानिया है और पिता मिस्टर केशव सिंघानिया। आयशा मालविका और आदर्श की बेटी थी जिसे बचपन में आपसे बदल दिया गया था। वे तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अभिमान ने बताया। उसे सुनकर इशिका को झटका लगना लाजमी था। इशिका खड़ी होकर अभिमान से बातें कर रही थी। जैसे ही उसने ये सब सुना उसके कदम थोड़े लड़खड़ा गए थे, लेकिन अभिमान ने उसे थाम लिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों अभिमन्यु इशिका को सच्चाई अभी नहीं बताना चाहता था। अभिमान ने इशिका को जल्दी से बिठाया और पानी देते हुए कहा, प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचिए, इतना सब कुछ मेरे सामने रिवील कर दिया और अब बोल रहे हो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इशिका ने उसे घूरते हुए कहा। क्या करूँ, चाचू को इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकता और वो आपको इतनी जल्दी कभी सच नहीं बताते, अभिमान ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं कितना कुछ भूल चुकी हूँ, आखिर मुझे पता क्यों नहीं चला, इशिका ने हल्के अंदाज में बोली। आप अभिमन्यु राजवंश को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आपका फ़ोन से लेकर मोबाइल तक का डेटा हैक करके उसे पुराने टाइम के हिसाब से सेट कर दिया गया था। उन्होंने वो सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ हटवा दिए थे जो आप दोनों से जुड़े हुए थे। अभी तो आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल जो ज़रूरी था वो मैं बता चुका हूँ, अभिमान बोला। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। देखा जाए तो जो बातें उसे जाननी चाहिए थी उसके बारे में उसे पता लग गया था। हमें अब घर चलना चाहिए, अभिमान ने इशिका की तरफ देखकर कहा तो इशिका ने हाँ में सर हिला दिया था। कौन से घर लेकर चलोगे? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। मुझे लगता है आपको अपने घर राजवंश विला में जाना चाहिए, चाचू आपके लिए बहुत परेशान है, आपको बात कर लेनी चाहिए, अभिमान ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। अभिमान इशिका को अपने साथ लेकर राजवंश विला के लिए निकल गया था, तो वहीं अभिमन्यु और पृथ्वी इशिका को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें सामने से इशिका और अभिमान साथ में आते हुए दिखाई दिए। इशिका को अपने सामने देखकर अभिमन्यु को राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही अभिमान को वहां देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अभिमान और आशी की शादी के बारे में उसे खबर थी, ऐसे में आशी को छोड़कर अभिमान मुंबई में इशिका के साथ क्या कर रहा था? अभिमन्यु जल्दी से इशिका के पास गया। इशिका को किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी थी और वो बिल्कुल ठीक थी, ये उसके लिए काफी था। अभिमान, इशिका, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इशिका, तुम्हें पता भी है तुम्हारे गायब होने की वजह से मिसेस सिंघानिया कितनी परेशान है, तुम्हें इस तरह बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए था, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। वो इशिका को डांट जरूर रहा था, लेकिन उसकी इस डांट में भी उसकी परवाह छुपी हुई थी। इशिका अभिमन्यु को एक अलग ही नज़र से देख रही थी। अब उसे यकीन था कि वो उसका वही बचपन का दोस्त है जो उसके साथ तहखाने में कैद था। भले ही उसे याद ना हो, लेकिन अभिमन्यु ने अपना वादा निभाकर उससे शादी की, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। वहीं इशिका के कोई जवाब नहीं देने पर अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला, इशिका मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम इससे पहले कि अभिमन्यु की बात पूरी होती, इशिका ने उसके होठों पर उंगली लगाकर कहा, श्श, बाद में डांट लेना, पहले मुझे उस इंसान को जी भर कर देखने दो जो मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, और मैं उसे भूल गई। इशिका की बात सुनकर अभिमन्यु को एक पल के लिए लगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। उसने बिना सोचे समझे इशिका को अपने गले लगा लिया था। वहीं इशिका ने भी उसे नहीं रोका। उसकी आंखें बंद थीं और वो अभिमन्यु को महसूस कर रही थी। उसे हमेशा से अभिमन्यु की मौजूदगी जानी पहचानी लगती थी और अब उसका छूना भी उसे अनजाना नहीं लग रहा था। वहीं उन दोनों को साथ में देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अभिमान की खुशी कुछ पलों की थी। उसके पास आशुतोष सिंघानिया का मैसेज आया और अब अभिमान चाहकर भी आशी से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर सकता था। चलो, कोई तो है जो अपनी लाइफ में खुश है। आप दोनों साथ हो और फिलहाल ऐश सेफ है, मेरे लिए इतना काफी है, अभिमान ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर वहां से बिना किसी को कुछ बताए जाने लगा। वो यहाँ अभिमन्यु की मदद लेने आया था, लेकिन इस वक्त वो इशिका और अभिमन्यु के बीच में बोलकर उनके इस मूमेंट को खराब नहीं करना चाहता था।